मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 6 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं पवन कुमार का जो गांव ब्रह्मपुर से हैं जिला बक्सर बिहार से, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना एडमिशन लिया है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे अभी जो UPSC के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनकी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। 2 दिनों के बाद 8 मार्च है और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह जो नारी सब्जेक्ट है यानी कि महिलाएं या वीमेन एम्पावरमेंट आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से कह रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि शायद ही कोई वर्ष ऐसा रहा हो जब वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कम 2 प्रश्न न पूछे गए हों, कम से कम 2 प्रश्न। और ये जो 2 प्रश्न बनते हैं ये आपके मेंस के जनरल स्टडीज के 2nd पेपर में भी बनते हैं, जनरल स्टडीज के 3rd पेपर में भी बनते हैं और जनरल स्टडीज के 4th पेपर में भी बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नैतिकता से भी यह इशू जुड़ा हुआ है, समाज के विकास से भी जुड़ा हुआ है और आर्थिक संबल से भी जुड़ा हुआ है। और ये जो मैंने आपको 3 पेपर बताए हैं ये 3 पेपर इन 3 सब्जेक्ट को जो मैंने अभी आपसे कहा उनको कवर करते हैं। और ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत व्यापक टॉपिक है, क्योंकि देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, तो इस समय पर इस पर काफी आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। आज मैं भी आपको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके लिए चैलेंज इसका है कि आप इन आर्टिकल्स में से अपने लिए लेते क्या है या कौन सी बातें नोट करते हैं। यहां बस इसी के बारे में मैं कुछ तथ्य आपको देना चाह रहा हूं। होता क्या है कि जो बातें हम जान रहे हैं या जो बातें हमें सरल लगती हैं, जिनको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, यहां तक कि याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उन्हें हम नोट कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आसान मालूम पड़ती हैं। यहीं आपको बचना है। नारी पर जब आप लेख पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नारी शक्ति है और प्राचीन काल में ये था और फिर मध्य काल में ये गड़बड़ हो गया, इस तरह की ढेर सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और इसके बाद जब समस्याओं के निदान के तहत आप देखेंगे तो ढेर सारी बातें फिर वही मिलेंगी कि जिसमें इमोशनल तरीके से बातें लिखी जाती हैं, बातें कही जाती हैं, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की बातें होती है। सच अलग है और इमोशनल स्टेटमेंट अलग होते हैं। आपको बस यहां थोड़ी सी सतर्कता इस बात की रखनी है कि आप अपने आप को जो बहुत ही इमोशनल किस्म की जो बातें होती हैं उनसे बचाएं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि किसी ने यह सुझाया इस समस्या के निदान के रूप में कि हमें अपने मानसिकता को बदलना चाहिए या हमें सामंती चेतना से ऊपर उठना चाहिए, तो सवाल यह है कि उठना तो चाहिए लेकिन आप उठेंगे कैसे। तो आप इनसे थोड़ा बचिए और इसके लिए ठोस कदम क्या उठाए जा रहे हैं आप इस पर फोकस कीजिए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को बकायदे कमीशन दिए जाने के बारे में निर्णय दिया। ये बहुत बड़ा कदम है और लेटेस्ट भी है। इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव महिलाओं के अधिकार पर या महिलाओं की स्थिति, चलिए हम अधिकार की बात न करें, महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर पड़ेगा। अभी बकायदे सबरीमाला मंदिर और दूसरे ऐसे धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर के लगा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है जिसके लिए राष्ट्र प्रतीक्षा कर रहा है। 3 तलाक के विरोध में कानून बना दिया गया वीमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बजट में ऑलरेडी बकायदे जेंडर बजट की व्यवस्था की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बोर्ड में जो हमारे बिजनेस की बड़े बड़े जो कंपनी होती है उन बोर्ड में एक महिला निदेशक के लिए कानून बनाया गया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस हैं, ये मेजर चेंजेस हैं, ये मेजर चेंजेस आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप जब उत्तर लिखें तो आपके उत्तर बहुत ठोस हों, क्योंकि इनका प्रभाव पड़ता है और बहुत ही जबरदस्त रूप से पड़ता है। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे जब महिलाओं को सेना में कमीशन दिए जाने की बात कही थी उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि बिना जेंडर समानता के आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो अगर हम समाज को आगे ले जाने के लिए जेंडर समानता की बात करते हैं तो या तो समाज अपने आप उसे करे, और अगर समाज अपने आप नहीं कर रहा है तो समाज से ये काम कराया जाए। तो कैसे कराया जा सकता है? वो कानून के जरिए कराया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसे कानून के समकक्ष मान्यता मिलती है, या तो फिर यह है कि केंद्र सरकार संसद में विधेयक ला करके उसे बदले। तो आपको ऐसे बहुत ही जो रियलिस्टिक अप्रोच वाली जो बातें होती हैं उन बातों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस दौर में आपको ढेर सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए मुझे लगा कि सतर्कता के बतौर मुझे आपको यह बात बतानी ही चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि अब मैं अपने मुख्य विषय पर आऊं, चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं कुछ सूचनाएं देता हूं, तो अब सूचनाएं कुछ देना चाहूंगा। पहला तो यह है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल मिलेंगी, जैसे कि मिलती रहती हैं। आपको योजना के आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, आपको कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, और इसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों आर्टिकल्स होते हैं। एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है जो बेसिकली मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए मैं बात करना चाहूंगा इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न पर। कल मैंने अशोक कुमार की चर्चा की थी, उन्होंने वे पहले स्टूडेंट हैं जो उन्होंने यूपीएससी ऑफिस जाने के बाद मुझे प्रश्न भेजे हैं, तो शुरुआत बेहतर है कि हम उन्हीं के भेजे गए प्रश्नों से करें। इन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत की है, और वो ये है कि जिस स्टूडेंट के उन्होंने प्रश्न भेजे हैं उनके पृष्ठभूमि भी बताई है। और देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि ये इंटरव्यू है, ये बहुत ही इंडिविजुअल है, तो वो प्रश्न क्रिएट कहां से करेंगे? जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपसे ही प्रश्न तैयार करता है, आपके माध्यम से ही वो प्रश्न तैयार करता है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप कहां रहते हैं, कहां नौकरी कर रहे हैं, किस तरह की आपकी एजुकेशन रही है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मैं जब फैमिली बैकग्राउंड की बात कह रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि उसका आपके मार्किंग पर कोई असर पड़ता है। फैमिली बैकग्राउंड की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पिता किसान हैं, तो हो सकता है कि आपसे वो सीधे सीधे एग्रीकल्चर के बारे में पूछे, तो उस रूप में लीजिएगा, है ना। बैकग्राउंड का आपके मार्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सच पूछे तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि यूपीएससी को इन सब चीजों से सच पूछे तो कोई फर्क नहीं होता, वो ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपकी बैकग्राउंड बहुत पुअर है, सामान्य है, पुअर नहीं कहना चाहिए, बहुत ही सामान्य है, और यदि आप यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं दो लेवल को क्रॉस करके, तो वो कहीं ना कहीं बोर्ड के मेंबर्स को प्रभावित करता है कि यार देखो, इसकी बैकग्राउंड तो ऐसी कोई खास है नहीं, इसके बावजूद इस स्टूडेंट ने इतना किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इमेज को बढ़ाता ही है। इसीलिए आपकी इसको लेकर के किसी तरह की कोई कुंठा न पालें। तो मैं जिस स्टूडेंट के अभी प्रश्न आपको बता रहा हूं जिससे पूछे गए थे, तो वो राजस्थान का रहने वाला है, जयपुर का रहने वाला है, उसका जो सब्जेक्ट था ऑप्शनल सब्जेक्ट वो फिलॉसफी है, और बकायदे वो दूरदर्शन में काम कर रहा था, और साथ ही साथ उसने इंजीनियरिंग की हुई थी। ये मैंने उसका बैकग्राउंड बताया है। तो अब मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, जब तक आप इनसे पूछे गए प्रश्नों को इनके बैकग्राउंड में के संदर्भ में नहीं देखेंगे, तब तक आप इंटरव्यू के चरित्र को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं, नॉट एट ऑल, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से होंगे। लेकिन या फिर आप कह सकते हैं कि फिर जब हमारे प्रश्न हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से होंगे तो हमको आप ये प्रश्न बता क्यों रहे हैं? मैं ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूं, दो बातें। पहला तो है कि आपको ये भरोसा हो जाए कि आपका बैकग्राउंड कितना ज्यादा काउंट करता है। दूसरा ये कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बहुत बड़ा हिस्सा करेंट अफेयर्स का होता है, और करेंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि एक साल डेढ़ साल पहले के करेंट अफेयर्स, जैसा कि हम प्री और मेंस में लेकर के चलते हैं। यहां करेंट अफेयर्स का मतलब है बिल्कुल अभी दो चार पांच दिन में जो हो रहा है, या एक आध दो महीने में जो बहुत बड़ी घटनाएं हुई है, बस उनको लेकर। और जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो बहुत ही सामान्य तरीके के होते हैं, बहुत ही प्यारे किस्म के होते हैं। मैं आप लोग सबको और भी कुछ प्रश्नों से अवगत कराऊंगा, तो आइए पहले हम इनको देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, इनसे पूछा गया कि सीएए के संदर्भ में कौन से चार देश भारत के खिलाफ थे। आपको मालूम है टर्की, मलेशिया, इन सब ने कुछ बातें की थी, तो कौन से चार देश भारत के खिलाफ थे। गीता के कंपेयर में कोई वेस्टर्न फिलॉसफी, जो गीता के समकक्ष, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इनका फिलॉसफी ऑप्शनल था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया। अगर आपकी फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। पावर्टी और क्राइम के बीच रिलेशन, अब आप देखिए कि इसे कितना सिंपल सा है, लेकिन याद रखिए कि इसके आंसर उतने सिंपल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आप एक किसान के बेटे हैं, फिर आप किसानी क्यों छोड़ना चाहते हैं, किसान की हालत ठीक करने के उपाय बताइए। अब आप देख रहे हैं बहुत से किसान अपना काम छोड़ रहे हैं, तो अब और एग्रीकल्चर बकायदे आपके सिलेबस में है मेंस के थर्ड पेपर में, तो आप बकायदे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्थितियों के बारे में जानते हैं, तो अब ये प्रश्न क्या कोई आपको कठिन लग रहा है। फिर इनसे पूछा गया विलेज टूरिज्म, गांव में कैसे पर्यटन को विकसित किया जाए, तो चूंकि ये किसान के बेटे हैं, गांव में रहते हैं, गांव में जाते ही होंगे भले अभी वो जयपुर में रह रहे हों, तो आप बताइए कि आप विलेज टूरिज्म को कैसे डेवलप करेंगे। तो यहां देखिए आपके मौलिकता की बात है, अदरवाइज टूरिज्म पर तो ढेर सारी बातें होती रहती हैं, विलेज टूरिज्म वगैरह पर मैंने बकायदे योजना के आर्टिकल्स आए थे, मैंने आपको भेजे भी थे, तो आप देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें कहीं भी आपको कोई अनोखापन नहीं दिखाई देगा। पुलिस व्यवस्था की कुछ कमियां यदि हैं तो बताइए और उसे दूर करने के उपाय बताइए। पुलिस व्यवस्था पर हम लोग लगातार पुलिस प्रणाली की सुधार पर बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट से पूछा गया है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में बताइए और इससे क्या फायदा हो सकता है। आपको मालूम है कि इस पर मैंने डिटेल में बात की थी जब उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों के लिए ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपनाई गई थी। तो फिर आते हैं कि ओपन एजुकेशन बताइए, उन्होंने यह भी पूछा कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या खराबी है कि वहां पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। अब गवर्नमेंट स्कूल की खराबी की बात क्यों की इन्होंने, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं तो किसान ज्यादातर अपने बच्चों को, गांव के किसान जो है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। तो देखिए उस प्रश्न को अगर आप उनके बैकग्राउंड से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ये वहां से आया है। फिर राजस्थान में सोलर सिस्टम की स्थापित करने के लिए बताइए आप क्या करेंगे। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में बहुत रेगिस्तानी इलाका भी है, खूब हवाएं चलती हैं, तो बताइए आप सोलर सिस्टम कैसे स्थापित करेंगे। तो आप कोई बहुत आप यूं कह लीजिए कि रॉकेट साइंस के बारे में वो नहीं पूछ रहे हैं। आप बी टेक करके 4 साल से क्या कर रहे हैं, है ना, बी टेक करने के बाद और कुछ कोशिश कर रहे होंगे, 4 साल के बाद इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए हैं, तो ये प्रश्न पूछना बहुत ही स्वाभाविक है। फिर ऑल इंडिया रेडियो एंड टेलीविजन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया होगा, डिटेल में उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन अब इनसे ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन के बारे में क्यों पूछा गया, जैसा कि मैंने बताया कि ये दूरदर्शन में काम कर रहे थे। तो मित्रों प्रश्न इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात थी उन प्रश्नों के जड़ में क्या है उससे मैं आप सबको अवगत करा सकूं, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न आप सबके सामने रखे हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दुष्यंत कुमार दिल्ली से, फाल्गुनी पुरुलिया वेस्ट बंगाल से, हरेंद्र सिंह चमोली उत्तराखंड से, रश्मि पैकरा दिल्ली से, विकास यादव कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और नितेश विश्वकर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों 2 दिनों के बाद मुलाकात होगी, इन 2 दिनों के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, साथ ही मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।